नमस्कार, संयुक्त राष्ट्र समाचार के साथ मैं सचिन गौड़। 14 अगस्त 2020 के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में सुनिए विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 की रोकथाम और उपचार पर केंद्रित यूएन स्वास्थ्य एजेंसी की एक पहल दिखा रही है नतीजे, लेकिन अरबों डॉलर की वित्तीय मदद की दरकार। लेबनान के बेरूत बंदरगाह पर हुए भीषण विस्फोट की जांच और जवाबदेही तय करने की पुकार। भोजन की किल्लत की आशंका के बीच राहत कार्य में तेजी। एक खास मुलाकात, पर्यावरण संरक्षण के लिए परंपरागत तरीकों को बढ़ावा दे रही युवा जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग से, और कोविड-19 की रुकावट के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पोलियो उन्मूलन अभियान फिर शुरू। आपको याद दिलाते चलें कि खबरों को विस्तार से पढ़ने और खास रिपोर्टों और इंटरव्यूज को सुनने और देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। पता है news.un.org/HI। अब समाचार विस्तार से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ष अप्रैल महीने में एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर नामक एक पहल को शुरू किया था, जिसके तहत कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन और उपचारों को तेजी से विकसित करना था। गुरुवार को यूएन एजेंसी के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने बताया कि ये पहल नतीजे दिखा रही है। इसके तहत 9 अलग अलग वैक्सीनों को विकसित करने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये वैक्सीनें अपने परीक्षण के दूसरे और तीसरे चरण में हैं। इसके समानांतर यूएन एजेंसी सभी देशों में तेजी से वैक्सीन के न्यायसंगत और निष्पक्ष वितरण की योजना का खाका भी तैयार कर रही है। जिनेवा में गुरुवार को स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसस ने बताया कि भविष्य का सबसे अच्छा रास्ता साथ मिलकर आगे बढ़ने का है। साथ ही उन्होंने एक्ट एक्सेलरेटर को वित्तीय संसाधन मुहैया कराने की अहमियत पर बल दिया है।
फंडिंग द एक्ट एक्सेलरेटर विल कॉस्ट अ टाइनी फ्रैक्शन इन कंपैरिजन टू द अल्टरनेटिव वेयर इकोनॉमीज रिट्रैक्ट फर्दर एंड रिक्वायर कंटिन्यूड फिस्कल स्टिमुलस पैकेजेस।
एक्ट एक्सेलरेटर पहल को वित्तीय मदद उन विकल्पों की तुलना में कम खर्चीली है जिनमें अर्थव्यवस्थाएं और कमजोर होंगी और लगातार आर्थिक राहत पैकेजों की जरूरत पड़ती रहेगी। इस पहल के लिए $31 अरब की धनराशि की जरूरत बताई गई है। महानिदेशक गेब्रेयेसस ने बताया कि विश्व की 70% आबादी वाले देश एक्ट एक्सेलरेटर नामक इस पहल में या तो शामिल है या फिर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए भीषण विस्फोट के लिए न्याय की पुकार लगाई है और इस घटना की जवाबदेही तय किए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि 4 अगस्त को बेरूत बंदरगाह पर 2,500 टन से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट के भंडार में विस्फोट से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, हजारों लोग घायल और बेघर हुए थे, अनेक लोग अब भी लापता बताए गए हैं। इस बीच विश्व खाद्य कार्यक्रम ने बेरूत में भीषण विस्फोट के बाद भोजन की किल्लत होने की आशंका जताई है और हालात से निपटने के लिए राहत कार्यों में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
यूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों ने गुरुवार को एक साझा बयान जारी कर कहा कि इस घातक विस्फोट का दायरा और असर अभूतपूर्व है। यूएन विशेषज्ञों ने तत्काल सहायता सहारे व पीड़ितों को मुआवजे की अपील की है और आगाह किया है कि ऐसा करते समय भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेबनान की राजधानी बेरूत में इस विस्फोट से पहले ही देश कोविड-19 महामारी और राजनीतिक, आर्थिक व वित्तीय संकट से जूझ रहा था। बेरूत बंदरगाह पर अनाज भंडारण की व्यवस्था लगभग पूरी तरह बर्बाद हो गई है और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी भारी असर हुआ है। लेबनान अपने 85% भोजन के लिए आयात पर निर्भर है। विशेष रिपोर्टर ने स्पष्ट किया है कि लेबनान की जनता के पास घटना की सटीक जानकारी पाने का अधिकार है। उन्हें बताया जाना होगा कि इस विस्फोट से किस प्रकार के स्वास्थ्य व पर्यावरणीय जोखिम पैदा हुए हैं। आपात राहत कार्यों के तहत विश्व खाद्य कार्यक्रम 17,500 मीट्रिक टन आटे और 3 महीने के लिए जरूरी अनाज की आपूर्ति करने में जुटा है ताकि खाद्य भंडारों को मजबूत बनाया जा सके। यूएन एजेंसी अपने नकदी सहायता कार्यक्रम का भी विस्तार करने की योजना बना रही है, जिसके जरिए फिलहाल 1,00,000 से ज्यादा लोगों की सहायता की जा रही है। इस योजना का लक्ष्य देश भर में 10,00,000 लोगों तक पहुँचना है, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो विस्फोट से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस व्यवस्था को चलाने, आपूर्ति श्रृंखला में मदद सहित आपात सहायता कार्यों के लिए यूएन एजेंसी को $23 करोड़ की रकम की आवश्यकता होगी।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने जलवायु परिवर्तन, लैंगिक असमानता सहित अन्य विश्व चुनौतियों से निपटने के प्रयासों में योगदान के लिए युवाओं की प्रशंसा की है। यूएन प्रमुख ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय युवजन दिवस पर विश्व नेताओं का आह्वान किया कि युवाओं की संभावनाओं को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ प्रतिष्ठा जैन।
यूएन प्रमुख ने कोरोना वायरस संकट की पृष्ठभूमि में युवा पीढ़ी की सहन क्षमता, उपाय कुशलता और संवाद के प्रति इच्छा रखे जाने की सराहना की है। महासचिव गुटेरेश ने अंतर्राष्ट्रीय युवजन दिवस पर अपने संदेश में कहा कि युवजन वो हैं जो जलवायु कार्रवाई की मांग के लिए आगे आए हैं। वे नस्लीय न्याय व लैंगिक समानता के लिए संगठित हो रहे हैं और एक ज्यादा टिकाऊ दुनिया की मुहिम के समर्थन में है। बहुत सी ऐसी युवा महिलाएं हैं जो न्याय और जलवायु कार्रवाई के लिए संगठित होकर अग्रिम मोर्चे पर सक्रिय रही हैं और वे साथ ही COVID-19 के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में भी अग्रिम मोर्चे पर सेवारत हैं। महासचिव ने जोर देकर कहा कि युवा पीढ़ी के साथ किए गए वायदे को साकार रूप देने के लिए उनके समावेशन, भागीदारी, संगठनों व पहलों में और ज्यादा निवेश किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने हर स्थान पर सभी नेताओं व वयस्कों से आग्रह करते हुए कहा कि विश्व के युवाओं को सक्षम बनाने के लिए हर संभव काम किया जाएगा ताकि वे सुरक्षा, गरिमा, अवसरों से भरा जीवन जी सकें और अपनी महान संभावनाओं के अनुरूप पूर्ण योगदान दे सकें। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवजन दिवस की थीम वैश्विक कार्रवाई के लिए यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन यानी युवाओं की भागीदारी है। इस दिवस पर आयोजनों के जरिए बताया जा रहा है कि स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर युवाओं के साथ संपर्क व उनकी भागीदारी बढ़ाने से राष्ट्रीय और बहुपक्षीय संस्थाओं व प्रक्रियाओं को मजबूती दी जा रही है। इसके अलावा औपचारिक रूप से संस्थागत राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वर्ष #31daysofyouth नामक एक सोशल मीडिया मुहिम भी शुरू हुई है जिसमें अगस्त महीने में युवाओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
भारत में ओडिशा राज्य की अर्चना सोरेंग दुनिया भर से चुने गए उन 7 युवाओं में से हैं जिन्हें पर्यावरण के मुद्दे पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के युवा सलाहकारों के समूह में शामिल किया गया है। अर्चना सोरेंग क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर विभिन्न युवा संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही हैं और आदिवासी समुदायों के पारंपरिक ज्ञान और प्रथाओं को संरक्षित कर उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत हैं। यूएन न्यूज हिंदी की अंशु शर्मा के साथ एक बातचीत में अर्चना सोरेंग ने बताया कि आदिवासी जनजातियों को जलवायु कार्रवाई के केंद्र में रखा जाना अहम है और पर्यावरण संरक्षण के उपायों के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही उनकी परंपराओं और प्रथाओं से सीख ली जानी चाहिए। युवा जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग के साथ अंशु शर्मा की बातचीत।
अर्चना, आप उन 7 युवाओं में शामिल हैं जिन्हें दुनिया भर से महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के पर्यावरण पर युवा सलाहकारों के समूह में शामिल किया गया है, तो जलवायु मुद्दे पर किन कार्यों के लिए आपको ये सम्मान मिला है और अब तक के अपने सफर के बारे में कुछ बताइए।
मेरा नाम अर्चना सोरेंग है। अगर मैं खड़िया आदिवासी समुदाय से आती हूँ तो मेरा जो नाम है सोरेंग उसका मतलब है पत्थर, रॉक। तो ये दिखाता है कि किस तरह से आदिवासी समुदाय की जो जीवन शैली है प्रकृति से जुड़ी हुई है। मतलब हमारे जो परिवार के बुजुर्ग है, मेरे नाना जी, मेरे पिताजी, ये सभी लोग जंगल संरक्षण करने के लिए गांव में कमेटी बनाए थे और इसी तरह से वो पीढ़ी दर पीढ़ी ये जंगल सुरक्षा और प्रकृति को बचाने की प्रक्रिया चलाते आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मैंने बचपन से देखा है। फिर उसके बाद जब मैंने मास्टर्स किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में रेगुलेटरी गवर्नेंस में, तब मैंने एनवायरमेंटल रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। तब मुझे ये एहसास हुआ कि जिस तरह से हमारी जो आदिवासी समुदाय है प्रकृति को बचाती आ रही है और जिस तरह से जीवन शैली जी रही है जो प्रकृति से जुड़ा है, तो बहुत जरूरी है कि पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए वो अपनी जो संस्कृति है और उनकी जो भी इतिहास रही है उसके बारे में लिखा जाए। तो तभी से मेरे में वो रुचि आई कि मुझे एक आदिवासी समुदाय का हिस्सा होने के साथ साथ ये मेरी कर्तव्य है कि मैं समुदाय के बारे में लिखूं, रिसर्च करूं कि किस तरह से हमारे आदिवासी समुदाय कंट्रीब्यूट कर रही है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को लेके और इकोलॉजिकल हार्मनी या रेस्टोरेशन के लिए वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है।
तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सलाहकार समूह में अपने इस पारंपरिक ज्ञान का आप किस तरह उपयोग करेंगी, क्या भूमिका है इस सलाहकार समूह में आपकी?
तो हमें उनको सजेशंस देना है, इनपुट्स देना है और फीडबैक्स देना है कि ये क्लाइमेट एक्शन को किस तरह से, सिक्स जो क्लाइमेट एक्शन है सेक्रेटरी जनरल के, उसको किस तरह से लागू करवाना है।
संयुक्त राष्ट्र किस तरह से युवाओं को बेहतर तरीके के साथ आगे लेकर चल सकता है इन मुद्दों पर?
जो भी आगे पॉलिसी बनेगी वो लागू हम युवाओं पे होगी, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र युवाओं की बात सुने। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एक मौका मिला है हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू से युवाओं की जो भी आवाज है उनको वहां पे प्रेजेंट करेंगे।
तो भविष्य की क्या योजना है इस नई भूमिका के साथ?
युवाओं के पास अलग अलग कला है, कोई लिखने में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, उसी कला के द्वारा हम लोग को क्लाइमेट एक्शन की बात को आगे बढ़ाना है। सिर्फ एक स्तर पे हम लोग को इसकी चर्चा करनी नहीं करनी है, बल्कि एकदम ग्रास रूट से लेके ऊपर लेवल तक चर्चा करनी है।
अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
युवाओं को मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले हमें जिंदा रहना जरूरी है, जीवित रहना जरूरी है, और जीवित रहने के लिए सबसे बड़ी समस्या जो अभी है वो है क्लाइमेट क्राइसिस। तो इसीलिए हम लोग को क्लाइमेट एक्शन पे काम करना है, बिकॉज इट विल एंड इट इज अफेक्टिंग अस।
युवा जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेंग के साथ अंशु शर्मा की बातचीत। विश्वव्यापी महामारी कोविड 19 से टीकाकरण अभियानों में व्यवधान आया था, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रमों को फिर शुरू कर दिया गया है। महामारी के कारण एहतियाती उपायों के मद्देनजर पोलियो टीकाकरण कार्यक्रमों की रफ्तार थम गई थी, ताकि बच्चों, उनके अभिभावकों और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने के जोखिम को कम किया जा सके। लेकिन इसके बाद दोनों देशों में पोलियो के नए मामले सामने आए थे। अंशु शर्मा की रिपोर्ट।
मंगलवार को यूनिसेफ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो टीकाकरण अभियान फिर से शुरू हो गया है। दोनों दुनिया के उन चंद देशों में बचे हैं जहां पोलियो बीमारी पर अभी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। दक्षिण एशिया में यूएन एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय की निदेशक जीन गॉफ ने बताया कि अगर बच्चों को एक और स्वास्थ्य आपात स्थिति से बचाना है तो ये जीवन रक्षक वैक्सीन बेहद अहम है। अफगानिस्तान के तीन प्रांतों में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम जुलाई महीने में फिर से शुरू हो गए थे, जबकि देश के आधे हिस्से तक पहुंचने वाला अभियान अगस्त से शुरू होगा। उधर पाकिस्तान में टीकाकरण का शुरुआती दौर जुलाई महीने के अंत में शुरू हुआ, जिसमें करीब 7,80,000 बच्चों को खुराक पिलाई गई। अगस्त महीने में इसका दायरा बढ़कर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू करने की योजना है। पोलियो एक बेहद संक्रामक और अशक्त बना देने वाली बीमारी है, जो कभी कभी जीवन के लिए घातक भी साबित हो सकती है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इससे ज्यादा खतरा होता है, लेकिन वैक्सीन के जरिए इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। गौरतलब है कि मार्च 2020 में कोविड 19 संक्रमण का खतरा बढ़ने पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो सहित अन्य टीकाकरण अभियान रोक दिए गए थे। एहतियाती उपायों के मद्देनजर उठाए गए इस कदम का उद्देश्य बच्चों, उनकी देखभाल करने वालों और वैक्सीन की खुराक देने वालों के संक्रमित होने के जोखिम को कम करना था। लेकिन अफगानिस्तान में वैक्सीन अभियान थमने के बाद पोलियो के मामलों की संख्या 34 और पाकिस्तान में 63 पर पहुंच गई। उन क्षेत्रों में भी संक्रमण के नए मामलों का पता चला जिन्हें पहले पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था।
तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सचिन गौड़ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।